his gaze question my priority giving council class to his counselors at Trinity Temple recording on 9th of September 2014.
Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Kamalam Shri Guru Vaishnavansham Shri Rupam Svartanam Mitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Vajjan Sintam Kashnitam Jivam Shri Adham हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हरे कृष्णा। तो लंबे समय के बाद वैसे तो फेस्टिवल्स में आप सबका भक्तों का दर्शन होता रहता है, उत्साह बना रहता है हमारा, लेकिन क्लास शायद पिछली बार नहीं कर पाए थे, फेस्टिवल था कुछ राधाष्टमी है और उसके बाद फिर संडे को भक्ति विनोद ठाकुर जी का अपीयरेंस डे। बहुत ही भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे ढंग से उत्सव मनाया और आज आप सब लोगों को याद है जब हम क्लास लेके बताते थे ये खड्डा जो खुदा हुआ ये कुछ दिन बाद बड़ा होगा और आज उस खड्डे के ऊपर भर के आप यहाँ आ गए। और कुछ समय के बाद अगर सब ठीक चलता रहा भगवान की कृपा से तो आप इससे भी ऊपर जाएंगे, है ना, तो ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी आप लोगों की तो हम लोग और भक्ति में अग्रसर होंगे, है ना, भक्ति का स्तर बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो ऊपर जो है हम लोग सेकंड फ्लोर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, वास्तव में वैसे ये क्राइटेरिया तो नहीं है ऊपर चढ़ने का, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, चार नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे प्लेन में चढ़ते हैं जब ऊपर जाता है तब तो पता चलता है ना, एकदम झटका सा लगता है और फील होता है वो ऊपर जा रहे हैं, कानों में अचानक दर्द होता है ना, और जब वो स्थिर हो जाता है और आगे बढ़ रहा होता है अपनी डेस्टिनेशन पर तो लोगों को लगता है कुछ भी नहीं है, उठो वॉशरूम जाओ, एयर हॉस्टेसेस आती हैं, कुछ खाने को पूछती हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था और हमें भी लगता है कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा ना, एकदम स्थिर रहते हैं, लेकिन प्लेन जो भी चल रहा है वो अपनी मंजिल पे पहुंच रहा है और तब पता चलता है ये जब हम लोग लैंड करें। तो उसी तरह भक्ति में भी होता है कि जब शुरुआती दिनों में भक्त लोग साधना भक्ति का पालन करके आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत के कुछ चेंजेस तो उनको लगते हैं कि हाँ बड़े इफेक्टिव हुए कि हम लोगों ने अब सिनेमा घर छोड़ दिए, टेलीविजन देखना छोड़ दिया, मांसाहार नशा इत्यादि छोड़ दिया, है ना, तो एक समय तो लगता है कि हाँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब चार नियम दीक्षा इत्यादि होती है और उसके बाद वो रूटीन एक्टिविटीज करनी होती हैं, अपने जप करना है, साधना करनी है, सुबह मंगला प्रोग्राम इत्यादि करना है, तो धीरे धीरे फिर लोगों को लगता है कि अब इसमें कैसा उत्साह नहीं रहा भक्ति में, पता नहीं आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, और इस प्रकार हमारी भक्ति की उन्नति को देखकर कृष्ण हमारे पास उस प्रकार के जैसा हमारा स्तर है कुछ ना कुछ एग्जाम भेजते हैं हमारे पास, है ना, परीक्षाएं लेते हैं ये देखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि हम लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जो व्यक्ति सही प्रकार से साधना करता है तो धीरे धीरे से उसको अपने अंदर सारे बदलाव दिखते हैं, उसको अंदर जो गुण सद्गुण आते हैं वो देख पाता है कि मेरा क्रोध कम हो रहा है, मेरा जो है काम वासना खत्म हो रही है, मेरा जो है भक्तों के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है उनका संग करने में, उनके दोषों को देखने की जगह उनके सद्गुण में देख पा रहा हूँ, भगवान के नाम के रुचि के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो रही है, मेरा सरेंडर लेवल जिसे बोलते हैं शरणागति मेरी अब अपने सीनियर्स पर और भक्तों पर और गुरु महाराज पर बढ़ रही है कि अब जो बोलेंगे या जैसा बोलेंगे या जिस प्रकार मेरी आध्यात्मिक नौका को पार लगाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा, तो ये स्तर है भक्ति का जिसका जिसके अंदर ये सद्गुण आते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो ये एक साइन है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम क्रोध इत्यादि के जिस तरह के अवगुण बढ़ रहे हैं और उसके अंदर भक्तों के अंदर दोष देखने की वृत्ति बनी हुई है, नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है, खाली उम्र बढ़ रही है, माला चल रही है, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के सद्गुण नहीं आ रहे हैं, तो उसे तुरंत इलाज कराना चाहिए, एम्स में जाकर या अपोलो में जाकर, है कहां कराना चाहिए, क्योंकि अहंकार इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति झुकना नहीं पसंद करता। ये अहंकार ही तो है जिसकी वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं और जन्मों जन्मों तक सड़ना पड़ेगा। क्या कारण है कि अहंकार वश घमंड के वश हम झुकना नहीं चाहते। इस संस्था में जितने भक्तों ने सेवा करी उनमें से कुछ ऐसे भी हुए जो इस संस्था को छोड़कर चले गए और उनको बाहर जाके ये रियलाइज हुआ कि नहीं, प्रभुपाद जी जैसा कोई भक्त नहीं था, इस्कॉन जैसी कोई सोसाइटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अहंकार वश उस घमंड वश उस ईगो को अब क्रश नहीं करना चाहते, किसी को शरणागत नहीं होना चाहते, वापस नहीं आना चाहते, लोग बोलेंगे थूक के चाट लिया, लोग बोलेंगे अब क्यों आए हो, है ना, तो इस प्रकार उसको शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन वो वापस नहीं आता, अपने घर में पड़ा रहता है, ना किसी भक्तों से संग हो रहा है, ना वो किसी सेवा में एंगेज है, उसे लगता है भाई मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, कोई ददाती प्रति घृणाती नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तब उसे पता चलता है कि मेरा अभी तो इलाज की बहुत जरूरत है। जब व्यक्ति समाज में आएगा, उठेगा बैठेगा, तो उसको देखते कि अरे मेरा तो आकर्षण अभी भी स्त्रियों के प्रति है या पुरुषों के प्रति है, उसको लगेगा अरे अभी भी मुझे लोगों के अंदर अवगुण दिखाई दे रहे हैं, अभी भी मेरा जब थर्ड क्लास टाइप हो रहा है कि मैं सुनता ही नहीं, जब मुझे सुनाई नहीं देता, जब मैं जब करता हूं तो पूरी दुनिया के सारे काम याद आते हैं, जब करते समय मैं अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे हराऊं, उनको पीछे कैसे करूं, इसमें प्लानिंग चलती है, जब करते समय अभी भी भौतिक इच्छाएं मेरे हृदय में नाच रही हैं, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, अभी मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो हरिनाम चिंतामणि है और ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे बेशक विकृत रूप में करे, इस जन्म में करे, अगले जन्म में करे, लेकिन आपको हरिनाम का वो फल नहीं मिलने वाला जो मिलेगा मिलना चाहिए। तो श्रवण इत्यादि पे भी रुचि बढ़ेगी तब जब हम लोग ठीक प्रकार से करेंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। तो इस प्रकार जिन लोगों को भक्तों के बीच में रहना पसंद नहीं है, भक्तों के साथ मित्रता करना पसंद नहीं है, भक्तों के साथ गले मिलना पसंद नहीं है, और खासकर वो लोग भक्तों के बीच में आकर उनका किसी से संबंध नहीं है, तो ये एक इसे बोलते हैं प्राकृत भक्त, जिसका कि कोई संबंध नहीं है भगवान से, न ही भक्तों से, और ऐसा भक्त बेचारा काफी समय तक उस प्राकृत अवस्था में रहता है। चिंतित होना चाहिए हमें, चिंतित क्यों होना चाहिए कि क्यों नहीं मेरी रुचि नाम के प्रति बढ़ रही, क्यों नहीं मेरे भक्तों से अच्छे संबंध हो रहे, क्यों नहीं मैं उन भक्तों के सबके अंदर सद्गुण देख पाता, क्यों मुझे सबसे पहले कमी नजर आती है। तो चिंतित होना चाहिए। अगर हम चिंतित नहीं है और हमें नींद आराम से आ रही है, हमने किसी भक्त को ऑफेंड कर दिया, किसी भक्त के साथ हमने दुर्व्यवहार कर दिया, चाहे गलती किसी की भी थी, लेकिन आपने दुर्व्यवहार किया, आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया, आपने अपने सीनियर की आज्ञा नहीं मानी, तो व्यक्ति को नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसी घटना कभी हो जाए तो उसको तुरंत जाकर माफी मांगनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इशू, और हर चीज का इलाज प्रणाम है। आप कभी किसी की निंदा कीजिए, आप किसी के साथ कोई मतभेद कीजिए, आप जो प्राकृत अवस्था में, उसे तो लगेगा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, वो तो 10 को और खराब करेगा ये बताकर कि कल क्या हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, मैंने ऐसा बोल दिया, फिर ऐसा कर दिया। 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में बदनाम करेगा पहले दूसरे व्यक्ति को, मतलब खुद की तो भक्ति खराब कर रहा है, 10-20 लोगों को और नुकसान पहुंचा रहा है निंदा करके। और इस प्रकार अपना डिवोशन, अपनी भक्ति तो अपनी स्टेज तो प्राकृति रखी, और स्टील फ्रेम्ड हार्ट, या जैसे कहते ना हिप्नोटाइज होता है व्यक्ति, कुछ भी बोलो समझ नहीं आता, ऐसी स्थिति में फिर वो किसी भी तरह के अच्छे इनपुट को नहीं लेगा, अच्छे सजेशन को नहीं लेगा, वो हमेशा अपने को सही बताने का प्रयास करे। तो जो 26 गुण भक्तों के बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, हमें पढ़ना चाहिए, ये भक्तों के गुण बताए हैं। और भक्त का मतलब होता है वो जो भगवान के साथ रह रहे हैं, भक्त का मतलब वो होता है जो सन्यासी गण है, भक्त का मतलब होता है जो हमारे बीच में रह रहे हैं, सारे भक्त हैं जो नाम जप रहे हैं। हम भी भगवान के नामों का जप करें तो हम भी भक्त बनने का प्रयास करें, तो वो गुण मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो इंट्रोस्पेक्टिव रहना हर समय, सेंसिटिव। सेंसिटिविटी कब आती है? जब हम लोग अच्छे ढंग से जप करते हैं। आसान नहीं है। मैं एक्चुअली आज हरिदास ठाकुर के विषय में बोलना चाह रहा था। हरिदास ठाकुर के जीवन में पता चलता है, एक तो यवन परिवार में जन्मे, मुस्लिम परिवार में, और भगवान के नामों से रुचि उत्पन्न हो गई और 300,000 नाम रोज जपने लगे। अब 300,000 नाम जप रहे हैं रोज, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, समय बचता था तो प्रचार इत्यादि भी करते थे, लेकिन 300,000 जप करके ही सब कुछ करते थे। यहां तक कि एक बार उनके वैष्णवता को देखकर, उनके नाम के प्रति रुचि देखकर समाज में तो बात होती है कि नहीं होती। जब भी कोई अच्छा भक्त बनने का प्रयास करेगा, लेग पुलिंग होगी होगी, ये भी एक साइन है, पता चलता है कि हाँ ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है, जिसकी लेग पुलिंग होती है, जिसकी निंदा, तो लोग उसकी टांग खींचेंगे, लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे वास्तव में ये इतना अच्छा भक्त नहीं जितना आप समझ रहे हो, ये तो ये है, मैंने ये देखा है और इसने ऐसा किया हुआ है। आप उसकी स्थिति को यहां लाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उनके प्रति द्वेष है, आप अपने आप को उससे अच्छा समझते हो। आपको भक्ति करते हुए ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक उतना मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि आप आज तक मान और सम्मान ही चाह रहे थे। और जो व्यक्ति मान सम्मान, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का तिरस्कार करता है, तो ये सब उसके पीछे भागते हैं। तो जो भक्त क्योंकि सही प्रकार से भक्ति कर रहा है और इन सब चीजों को नहीं चाहता, तो ये सब चीज उसके पीछे भागती है। तो हरिदास ठाकुर का नाम हर जगह हो गया। तो एक रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति थे, उनको बड़ा लगा कि अरे ये क्या है, ये तो यवन परिवार का है, इसका कुल तो देखो आप, इसको इतना महान भक्त समझ रहे हो आप, लेकिन फिर भी लोग सुनना नहीं चाहते थे। जो अच्छे भक्त हैं वो कहते हम तो नहीं सुनते भैया। उन्होंने कहा कि मैं इसको भक्ति से गिरा कर रहूंगा। उसने एक वैश्य को और कुछ लोगों को तैयार किया, कहा कि इसको भक्ति से गिराओ भैया, सुंदर वैश्य को भेजा, उसने कहा जी मैंने तो अच्छे अच्छे गिरा दिए, 3 दिन में लो, कोई दिक्कत, 3 दिन का समय मांगा। और कुछ लोगों को भी कहा कि तुम इसके साथ जाओ ताकि रंगे हाथों पकड़ो और फिर पूरे समाज में हम इसकी बेइज्जती करेंगे। होता है ऐसा। एक भक्त थे हमारे मित्र हैं, चेकोस्लोवाकिया के हैं, उनके गुरु हैं कदम्ब कानन महाराज। उन्होंने बताया कि एक बार जब कदम्ब कानन महाराज वृंदावन में प्रेजेंट में रहे, जब संन्यास हो गया उनका, तो एक बार उनके कमरे में एक स्त्री आ गई और उसने अचानक जो है प्रयास किया, उनसे ऐसी बातें करी, ऐसे भाव भंगिमाएं दिखाई इस प्रकार, ताकि उनका जो है फॉल डाउन हो जाए। मतलब प्रयास किया गया, या भेजा था किसी वटावट, बट वो एकदम कमरे से बाहर निकले, उन्होंने सबको रिपोर्ट किया। तो ऐसी स्थिति में भी लोगों को आप सोच नहीं सकते कि किस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। लोग करते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, तो उस खान ने भी, रामचंद्र खान ने भी भेजा। उस स्त्री ने कहा कि आप जो है, मैं सुंदर युवक हैं तो मैं जो है आपसे संबंध बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो अभी भगवान के नाम का जप कर रहा हूं और मेरी 3 लाख नाम लेने की रोज की प्रतिज्ञा है, मैं कुछ खाता या पीता भी 3 लाख के बाद ही हूं, तो आप इधर ही बैठ जाइए तुलसी के पास, मैं जप कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा आप जो बोला। हरिदास ठाकुर जी भगवान के शुद्ध भक्त सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको तुलसी के पास बिठाया और उच्च स्वर में भगवान के पवित्र नामों को जप किया। आप कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरि नाम सुनेगा घंटों, एक दिन हो गया तो सुबह होने लगी तो उसको लगा मुझे जाना चाहिए, रात को आई थी ये तो जब भी कर रहे हैं तब से, तो चली गई। रस खान ने कहा क्या हुआ, कहते कुछ नहीं वो जब भी करते रहे बट आज मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा काम। तो कहते ठीक है, अगले दिन फिर गई, उसने कहा क्षमा करना मैं कल जब ही करता रह गया, मेरी संख्या पूरी नहीं हुई थी, आप बुरा मत मानना प्लीज। हरिदास ठाकुर जी उसको बोल रहे बट आज भी जब करके मैं आज तो बात करूंगा आपसे। फिर जब शुरू किया, फिर उस हरिनाम सुनते रहे और फिर अगले दिन जाना पड़ा क्योंकि जब ही नहीं खत्म हुआ था। कहते ना इतना जब करके हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, है ना, नव योगेंद्र महाज बोलते हैं। तो इतना जब करते थे। तीसरे दिन उसने कहा जी आज किसी भी हालत में आज ये आपका काम हुआ ही हुआ, मतलब आज हुआ ही हुआ। फिर गई तीसरे दिन, फिर लड़के भेजे साथ में पीछे, तीसरे दिन भी जब सुनते रही और अचानक उसका हृदय, क्योंकि देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति अच्छी मेंटालिटी से कर रहे हैं, अब ये मत सोचने कि शुद्ध भक्तों के साथ ही ऐसा होता है, मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस प्योर होनी चाहिए, चाहे आप इस लेवल में है चाहे इस लेवल में है। अगर आपकी चेतना साफ है, शुद्ध है, आप हर क्रिया को सेल्फलेसली कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं और उसके पीछे आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये शुद्ध भक्ति ही है। शुद्ध भक्ति जैसी नहीं है, ये विशुद्ध सत्व की एक्टिविटी है। तो परमात्मा हृदय में है, उसके हृदय में परमात्मा है। 3 दिन चैंटिंग सुनकर उसका हृदय बदल गया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा जी मुझे माफ कर दें, मैं तो एक वैश्य हूं, आपको आपके भजन से गिराने आई थी, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था, सारी बात बता दी। तो हरिदास ठाकुर ने, उसने कहा मेरा उद्धार कीजिए, मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप भी जब कीजिए ना, 3 दिन सुनकर यह हालत है। तो जब दिया, नाम दिया उसको और उसने भजन करना शुरू कर दिया और रामचंद्र खान वहां से चले गए, सॉरी हरिदास ठाकुर जी वहां से चले गए। अब उस महिला ने जो वैश्य थी, 3 लाख नाम जप करना शुरू कर दिया पूरे दिन। देखिए शुद्ध भक्त के संघ का क्या प्रभाव पड़ता है। 3 लाख नाम जप शुरू कर दिया, लोगों तक खबरें जाने लगी, अरे भैया वो जो वैश्य थी वो भी 3 लाख जप कर रही है, दीक्षा ले ली, तो दूर दूर से लोग उसको देखने आने लगे। और फिर हृदय देखिए एक भक्त का, कि एक तो उसकी इतनी केयर की, बताते हैं कि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसी घटना घटी, इसके बाद भी जब वहां से वो चले गए तो एक भक्त थे बलरामाचार्य, जो कि कुल गुरु थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, ये पिता और चाचा थे उनके रघुनाथ दास गोस्वामी जी के। तो उस गांव में आ गए और एक बार क्या हुआ, वो लोग उनको सभा में ले गए हरिदास ठाकुर को, ब्राह्मणों की सभा, और उन्होंने बताया कि जो मेरे ये हरिदास ठाकुर जी हमारे परिवार में रह रहे हैं, हमारे कुल गुरु के मित्र हैं, या जाए हैं तो मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये वैसे यमन परिवार में थे लेकिन अब क्योंकि भगवान के नामों से इनकी रुचि है तो 300,000 नाम रोज जप करते हैं, भगवान के नाम के प्रति इनकी इतनी रुचि है। तो सब बड़े प्रभावित हुए और कुछ ब्राह्मण वहां बैठे थे तो उन्होंने भी बोलना शुरू करा, हाँ जी भगवान का नाम तो है ही बड़ा अच्छा जी, भगवान का नाम जप कर कर तो व्यक्ति को ऐसे मुक्ति प्राप्त हो जाए, पूछो ही मत। तो हरिदास ठाकुर जी को अचानक लगा और उन्होंने मना किया, नहीं 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 नहीं, हरि नाम से केवल मुक्ति मिलती है ये नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी चीज है, साइड, क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट नहीं बोलते, इफेक्ट नहीं बोलते, मतलब ठीक है ऐसी चीजें जो ऐसी मिल जाती हैं, जैसे सब्जी खरीदो धनिया ऐसे मिलता है ना, हरी मिर्च और धनिया ऐसे उठा लेते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि हरि नाम भी जो है उसका महत्व तो कुछ और है, ये तो धनिया और मिर्च के समान है। तो मुक्ति जो है इसका नहीं, हरि नाम से तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, हरि नाम से तो व्यक्ति कृष्ण के साथ रहेगा। तो जब उनको लगा कि इन्होंने मुक्ति को बहुत नीचे बोल दिया, कहते हो तो इसका मतलब क्या है, कि कहते हैं मुक्ति तो नाम अभास से मिल जाएगी, नाम अभास की स्थिति है जिसमें जो व्यक्ति चैंटिंग करता है उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है और भगवान के नामों के प्रति एकदम आकर्षण बढ़ता है, तो ये नाम अभास की अवस्था है। तो कहते हैं ये तो नाम अभास से हो जाएगा मुक्ति जैसी चीज। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना वहां से अगर मुक्ति ना मिली तो जो है आपको जो है 3 दिन में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी नाक काट दूंगा मैं, यूं बोला कि नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर तो बड़े विनम्र थे, कहते हैं हाँ काट लेना भाई, उनकी तो रुचि बहुत थी भगवान के नाम में। तो जब ऐसी बात विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, तो मजुमदार ने उनसे माफी मांगी, हरिदास ठाकुर से लेके चले गए, उनसे माफी मांगी कि हम ऐसे स्वभाव, कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन पता चलता है 3 दिन में ही, वो जो गोपाल चक्रवर्ती नाम था उसका, उस ब्राह्मण का, उसको कोढ़ हो गया और ऐसा कोढ़ हुआ तो शरीर गलने लगा, शरीर गलते गलते फेस तक आया, तो उसकी नाक जो है 3 दिन में नाक बहकर नीचे गिर गई, टूट गई, मतलब ये है खत्म ही हो गई। सब लोग हैरान, ये वही व्यक्ति है जिसने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया था, भरी सभा में ललकारा था और आज इसकी यह हालत हो गई। जब हरिदास ठाकुर जी को पता चला तो उनको हृदय में दुख भी हुआ उस व्यक्ति के प्रति। तो इस प्रकार जो है शुद्ध भक्ति की जो है जो क्वालिटी है, हम लोग कई बार जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हम ना इर्द गिर्द के चक्रों में फंस जाते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर रहा है, उसने मेरे खिलाफ ये साजिश रची, और फिर कई बार हम लोग उनको जवाब देने के लिए, उनको घसीटने के लिए हम ऐसा प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो भक्त हैं उनको चाहिए कि वो इस प्रकार की चीजों में पड़े ही ना, क्योंकि उन भक्तों को चाहिए कि वो पूरी तरह से कृष्ण को ही शरणागत रहें और सहन करें, क्योंकि शुद्ध भक्त की तो महिमा ही कुछ हो रहा है, वो तो चलते फिरते तीर्थ हैं। अपने इन्हीं गुणों की वजह से, अपनी इसी विनम्रता की वजह से भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों की विनम्रता देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, क्योंकि मेरे भक्त इतने इतने विनम्र हैं कि वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं किसी को, वो कुछ करना ही नहीं चाहते किसी के साथ, वो एक बार तो इशारा करें मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा उस व्यक्ति को खत्म करने। गोपाल चक्रवर्ती ने बोला और 3 दिन में उसकी पोल करवा दी भगवान, क्योंकि भगवान के भक्त तो एक बार क्षमा कर देते हैं कि ठीक है चलो क्या दिक्कत, लेकिन भगवान से नहीं क्षमा होता। तो इस प्रकार जो है हरिदास ठाकुर की महिमा कितनी थी। फिर बाद में वो जब अद्वैताचार्य के यहां भी गए शांतिपुर में, तो तो शांतिपुर में जब रहते थे उनके साथ, तो दोनों मिलकर भगवान का आह्वान करते थे, क्योंकि लोग भक्त नहीं थे उस समय, काली पूजा ये पूजा बलियां देना तो बड़े वो थे, तो उनको लगा कि हमको भगवान को अवतार लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो उस अद्वैताचार्य जी के साथ रहते हुए भी एक बार क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी के घर में थे तो अद्वैताचार्य ने कहा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध है ना, अभी भी चल रहे हैं, आज से शुरू है, तो श्राद्ध जो है करना है मुझे, तो ब्राह्मणों को बैठाना होता है, उसमें दान इत्यादि करना होता है। तो उन्होंने देखा श्राद्ध है तो आप जैसे महान भक्त मेरे घर में 3 लाख जो नाम लेता है परम वैष्णव है ना, क्योंकि वैष्णव की जो स्थिति है वो ब्राह्मणों से भी कहीं ज्यादा है। तो उन्होंने जो भोग इत्यादि बनाया, उन्होंने वो सबसे पहले हरिदास ठाकुर जी को ही अर्पित किया कि भैया आप खाइए पहले, मैं आपको पहले रज की खिला दूं परम वैष्णव को, बाकी फिर मैं सबको बुलाऊंगा, क्योंकि आप जैसे वैष्णव को खिलाना तो 100-100 ब्राह्मणों को बिठाने के बराबर। और हरिदास ठाकुर जी ने खा लिया क्या, वो उन्होंने बड़ा मना किया कि भैया ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण लोग समाज के बड़े ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट लोग हैं, आप उनको बिठाइए, मेरे जैसे यवन को, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को जिसकी क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है, जो मुस्लिम परिवार में जन्मा है जिसका कुछ, उसको प्लीज आप ऐसा, इतनी विनम्रता। हरिदास ठाकुर को बोला नहीं आपको मैं जानता हूं ना, आप खाइए बस, मुझे मालूम है आपको फीड करना हजारों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर, ग्रहण कर लिया। लेकिन ये बात जो है ब्राह्मणों को पता चल गई, और हमारे स्मार्ट ब्राह्मण तो आपको मालूम है कितने स्मार्ट होते थे वो, है ना, जिन लोगों को बस लगता था कि हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और बाकी सब तो हमारे पैरों की जूती, क्योंकि ब्राह्मण वाले गुण नहीं थे, खाली जनेऊ से या खाली कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेते ही क्योंकि सबको अंधकार अज्ञान में पैदा होते हैं तो सारे शूद्र हैं। संस्कार आप भवे द्विजा, संस्कार जब होते हैं यज्ञ भवित संस्कार इत्यादि तब वो द्विज बनता है। वेद पाठात भवे विप्र, वेदों के अध्ययन से वो विप्र बनता है। और फिर ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है, जिसका आचरण ब्रह्म जैसा है। लेकिन वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा बोला गया, क्योंकि वैष्णव के अंदर ब्राह्मण की भी क्वालिटीज होती है। लेकिन कोई वैष्णव खाली जो ब्रह्म को जानता है, वेदों को पढ़ता है, हो सकता है बहुत अच्छा वैष्णव ना हो। तो उन वैष्णवों ने क्या किया, अद्वैताचार्य को खूब सुनाई, तो अद्वैताचार्य को बिठा दे, आप कहते हम नहीं खाएंगे ऐसे भोजन, मना कर, तुमने एक यमन को खिला दिया पहले, हम जैसे ब्राह्मणों को क्या करा, उनका अपमान कर दिया आपने, तो सबने मना कर दिया। बदले तो चाह रहे थे तो उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन कि भाई आप लीजिए प्लीज प्रसाद तो लीजिए, नहीं मना कर दी सर, शांत रहे, पूरा दिन निकल गया। अगले दिन उन्होंने फिर से ब्राह्मणों को बुलाया, कहा भाई ठीक है वो बना हुआ मत खाओ, क्योंकि अद्वैताचार्य समाज के बहुत बड़े व्यक्ति थे, सब लोग जानते थे उनके भक्त की, उनकी भक्ति को, उनके डिवोशन को, स्टिल उनके बुलाने पर आए ब्राह्मणों को, कहा कि आप लीजिए ना, आप कच्चा सामान लीजिए, चावल लीजिए, दाल लीजिए, सब्जी ले जाइए, आप अपना बना के खा लीजिए। तो लोग एग्री हो गए, हाँ ठीक है इस रूप में दान दे दीजिए हमें श्राद्ध का। तो जब वो लेकर गए, अचानक मौसम खराब हो गया, तूफान चलने लगा, बरसातें पड़ गई, 500 साल पहले गैस लाइटर चूल्हे तो होते नहीं थे, घरों में आग जलती थी तो लकड़ियां होती थी, इतनी खतरनाक तूफान चला कि सारी की सारी आग सबके घरों की बुझ गई, किसी घर में आग नहीं, कुछ मैच बॉक्स नहीं, अब आग नहीं चल रही तो क्या करें, अंगारे ठंडे पड़े, कुछ नहीं मिला, बरसातें और हो रही है, कोई किसी घर में पूछे है अग्नि नहीं है, आपके घर में अग्नि, कहीं अग्नि नहीं। तो ऐसा प्रकोप हुआ पूरा दिन नहीं, फिर अगले दिन भी बरसात रही, तूफान रहा, अगले दिन भी कहीं अग्नि नहीं, तो दो दिन अग्नि नहीं मिली। भूख की हालत खराब होगी ब्राह्मणों की, उनको लगा ये हमने अपराध किया ना अगले तचारे के प्रति, उनका तिरस्कार कर, तो ये उसी का फल है। तो सब माफी मांगने गए थे, और बाद में तत्कारों को लेकर गए हरिदास ठाकुर जी की गुफा में। पूरे गांव में कहीं नहीं है शांतिपुर में अग्नि, लेकिन उनकी गुफा में अग्नि थी। फिर वहां से अग्नि जला कर आई, अपना भोजन बनाया, उनको प्रणाम किया, क्षमा मांगी, तब जाके खा। तो जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, जिनके अंदर सदगुण हैं, ऐसे लोगों को कोशिश नहीं करनी पड़ती, बताना नहीं पड़ता कि मैं सही हूं मैं गलत हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण सब जानते हैं, उन्हें मालूम है गुरु सब जानते हैं, उन्हें मालूम मेरी अथॉरिटी मेरे से खुश है, क्योंकि उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो आचरण हमेशा अच्छा रखे बात। गुरु खुश है इसका मतलब आप कुछ भी कर रहे हो बात नहीं। तो इसी प्रकार जो सद्गुण से भरा हुआ उसके लिए हर चीज बहुत आसान हो जाती। इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे हरिदास ठाकुर कि एक बार फिर से स्वयं माया आ गई, माया देवी उनको आकर्षित करने के लिए, स्वयं माया देवी। अब माया देवी अगर कुछ बनकर आएगी तो हम सोच सकते हैं, और माया हर वो चीज है जो हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो जब स्वयं माया, अब जिस हर पूरी दुनिया ही मोहित है माया के प्रलोभनों से, तो जब स्वयं माया आ जाए किसी को लुभाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी के पास आई, प्रणाम किया, कहा जी मैं आपका संग करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बैठिए, आप भी बैठिए, नो प्रॉब्लम। तो चैंटिंग शुरू कर दी, उन्होंने कहा जी मेरा तो जप है। तो ऐसे ही उनके साथ भी एक दो तीन दिन लगा दी, उनको भी कुछ समझ नहीं आया। तीसरे दिन उन्होंने कहा जी क्षमा करना आचार्य जी, मैं स्वयं माया देवी हूं और आपका टेस्ट लेने आई थी। तो स्वयं माया को प्रकट होकर बोलना पड़ा और कहा जी मुझे भी आप मंत्र दीक्षा दीजिए। कहते मेरे को तो तारक मंत्र मिला, पारक नहीं मिला, मुझे कृष्ण प्रेम का प्रण दीजिए। मेरे को दूसरा मंत्र तो मिला मुक्ति वाला, लेकिन ये नहीं मिला शिव जी से। तो उनको भी जो है हरिदास ठाकुर जी ने उनका भी उद्धार किया। जिस गुफा में जप किया करते थे हरिदास ठाकुर, बताते लोग उनसे मिलने आया करते थे, उनका दर्शन करने आते थे, और जिस गुफा में होते थे ना वहां पर एक अलग प्रकार का विषैला एटमॉस्फेयर होता था, जिससे लोगों को चक्कर आना और स्मेल आना और बड़ी बुरी। तो सबने पूछा कि कैसे होगा, क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी ने बताया शायद यहाँ पर कहीं बहुत विषैला सांप है इस गुफा में, इसलिए हमारे साथ ये होता है, और हमको बोलना चाहिए हरिदास ठाकुर जी को कि आप इस जगह से निकल जाएं। जब हरिदास ठाकुर को पता चला कि यहाँ विषैला सांप है, अब हरिदास ठाकुर तो हमेशा आनंद में रहते थे नाम लेकर, उनको तो कुछ दुनिया से लेना देना नहीं, उनको क्या स्मेल और क्या वो, उन पे क्या प्रभाव पड़ना। लेकिन जो लोग नए थे उनको लगता था, उनको फील होता था स्मेल दुर्गंध इन सब में डुअलिटीज में तो फंसे ही होते हैं ना लोग। तो उन्होंने कहा श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, कई लोगों ने दरवाजा नहीं देखा, आवाज देख लिया। तो सब लोगों को तो लगता था कि यहां कुछ ऐसा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप स्थान बदल लें। तो अद्वैत आचार्य ने कहा ठीक है, मेरा जब रह गया तो ये जब करने के बाद फिर मैं स्थान को छोड़ दूंगा। अब देखिए भगवान है उनके हृदय में, भगवान है सांप के हृदय में भी, तो उस सर्प को लगा भाई इतने दिन से हरिनाम सुन रहा था, आज मेरी वजह से इनको जब कोठी अपना गुफा छोड़ना पड़ रहा है, तो वो सर्प खुद ही बाहर निकल गया, उन लोगों के सामने निकल के बाहर चला गया। मतलब किसी प्रकार का विघ्न नहीं है भक्ति में, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए सारे काम अपने आप ही सुगम हो जाते हैं। जैसा बोला गया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक बार स्मरण कर ले, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर ले, उनको नमस्कार कर ले, श्री चैतन्य नमामितम, क्या होगा? दुष्करम सुकरम भवेत। उसके जो मुश्किल से मुश्किल काम है, जो विपदाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? वो सब आसानी हो जाएंगी, सब में आसानी आ जाएगी। मतलब मुश्किल से मुश्किल काम भी उसका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्यों? क्या किया उसने ऐसा? उसने महाप्रभु को हृदय से पुकारा है, उसने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया है, उनको प्रणाम किया है। ये इनके इन प्रकार है, बस स्मरण कर ले महाप्रभु का। और कह रहे निश्चितम विपरीतम स्या, निश्चित रूप से इसका उल्टा हो जाएगा। किसका? इसी स्टेटमेंट का, कि मुश्किल से मुश्किल काम उसका आसान हो रहा है, और अगर वो महाप्रभु का स्मरण नहीं करता या उनको प्रणाम नहीं करता, निश्चितम विपरीतम स्या, निश्चित रूप से इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा? क्या है? आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये तो होने वाला था, सब कुछ सेटल था, सब कुछ, लेकिन उल्टा हो गया, मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। कारण कि ही इज नॉट, वो अच्छा भक्त नहीं है। उसको अपने कैलिबर पर, उसको अपनी शक्ति पर, उसको अपने एक्सपर्टीज पर, उसको अपने धन पर, अपनी ब्यूटी पर, इन सब चीज पर अहंकार है, अपने पोस्ट पर अहंकार है, तो उसके छोटे काम भी क्या होंगे? लटक जाएंगे। क्या किया उसने, क्या नहीं किया? उसने महाप्रभु का स्मरण नहीं किया। तो जो भगवान के भक्त हैं, जब वो भगवान का, क्योंकि हर समय स्मरण कर रहे हैं, जप इत्यादि कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई विपदा नहीं है। विपदाएं समस्याएं तो उनको दिखती हैं जो भी उस स्तर के भक्त नहीं। रूपा जी बोलते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन लोगों को चैंटिंग करना शुरू किया जब से, तब से मेरी लाइफ हैज बिकम मिजरेबल, यू नो, जब से शुरू किया ना, ये दिखता है, वो दिखता है, ये होता है, इतने दोष दिखते हैं, अपराध हो रहे हैं, ये हो रहा है, बड़ा कंफ्यूज होता है। कहते हैं रूपा जी तो क्या है, चैंट एंड बी हैप्पी, बिकॉज वी आर नॉट चैंटिंग प्रॉपरली, तो इसलिए हमारा लाइफ भी प्रॉपरली नहीं चल रहा है। आप अच्छे ढंग से जप करना शुरू कीजिए, अच्छे ढंग से श्रवण करिए, सदगुणों का जो है, अच्छे भक्तों का संग कीजिए, आपके साथ सब कुछ शुभ शुभ होना लगेगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मतलब ये अच्छा इन द सेंस कि आपकी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपको लगेगा नहीं कि आपके साथ बुरा हो रहा है। बाहरी दृष्टि से हो सकता है अप्स एंड डाउन है, शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ हो सकता है, ये बाहरी रूप से लोग, क्योंकि इसी को सक्सेस का क्राइटेरिया मानते हैं लोग। अगर आप ठीक हो, बच्चे कहना मान रहे हैं, बीवी पति कहना मान रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, घर भी अच्छा है, मकान के रेट भी बढ़ रहे हैं, बढ़िया गाड़ी है, मंदिर भी आप आ रहे हो बढ़िया ढंग से, तो लोग इसको क्राइटेरिया क्या मानते हैं, क्या ये सक्सेसफुल आदमी। लेकिन भक्तों की दृष्टि में ये सारा भार है, भार। निर्बंध कृष्ण संबंध, जो चीज भी उसके पास है वो कृष्ण से जोड़कर देखता है उसको, उसका भोग नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, और ये मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मुझे भगवान की सेवा में लगानी, चाहे वो मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, मेरा घर हो, मेरा धन हो, ये मेरे भगवान की सेवा के लिए, ये मेरे भोग के लिए। अगर मैं भोगूंगा इसको तो मैं बोल तो नहीं रहा कि मैं कृष्ण हूं, लेकिन मैं काम वही कर रहा हूं कि मैं कृष्ण बनना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी फिलॉसफी अभी क्लियर नहीं है। जिनका सिद्धांत क्लियर है उनके आचरण में आ जाता है, समझ पा रहे हैं? माला टांगे बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी नए आए हैं, कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग टाइम बिता रहे हैं, लेकिन आचरण में नहीं आई चीजें। तो जिसने ठीक प्रकार से सुनना शुरू किया है, अच्छे भक्तों का संग कर रहा है, तो उसके आचरण में आएगा। वो पूछेगा नहीं प्रभु जी मैं कितना दान करूं, वो पूछेगा नहीं प्रभु जी कि मैं जब शाम को भी कर सकता हूं क्या, वो पूछेगा नहीं प्रभु जी मुझे, उसको पता चल जाएगा और पूछ के करेगा तो बढ़ेगा आगे। वो वीआईपी गेस्ट नहीं होगा कि आइए आइए प्रभु जी, जो डिवोटी बन गया वो कह रहा नहीं मैं तो, आप लोग तो, मैं जैसे कई बार कलेक्शन के लिए जाते हैं, कई बार इतनी अच्छी चेतना के लोग मिलते हैं, जब उनसे हम दान की बात करते हैं, नए लोगों से, एकदम नए लोगों से, वो दान देते भी हैं, और जब हम उनका धन्यवाद करते हैं कहते धन्यवाद धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए कि आपने मेरी कमाई का धन भगवान की सेवा में लगा दिया, आप साक्षात मेरे लिए क्या हो, क्या शब्द बोलते थे भगवान, नहीं खुद खैर बोलते ही भगवान, बट आप मेरे लिए साक्षात मेरा उद्धार करने वाले व्यक्ति आ गए। कहता आपने मेरे जैसे व्यक्ति का धन भगवान की सेवा में लगा दिया, वरना ये धन तो मेरा नुकसान कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं इधर उधर लगा रहा हूं जिसकी वजह से चेतना उनमें रहती है। ऐसी चेतना के लोग कई बार भक्तों की भी नहीं होती, उनको भी क्या लगता है कि मैंने इतना दिया मुझे ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए, मैंने इतना दिया मेरे को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए, मैंने ये दिया मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो ये स्टेटस है मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए। और छोटी छोटी बात पर नाराज होकर परेशान रहते हैं कि तो बड़ा पंगा डाल दिया उसने दान देके। कई बार बाहर के लोग इस अच्छी चेतना की मिल जाते हैं, ऑलरेडी पायस होते हैं, फिलॉसफी क्लियर होता है, तो ये समाज में देगा कौन सिखाने के लिए, कौन सिखाएगा मुझे बताइए। कलयुग बढ़ रहा है, हर व्यक्ति नास्तिक बन रहा है, हर व्यक्ति ईर्ष्या द्वेषी है, हर व्यक्ति केवल भोग भोग और भोग इकट्ठा करना चाहता है, कौन सिखाएगा उनको कि जीवन ये नहीं, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं बाबा तुम अच्छा आचरण करो, दूसरे लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनकी चेतना मैंने कहीं ना कहीं फिक्स कर रखी है, लेकिन जिस दिन तुम्हें देखेंगे कि यार इसके भी दो हाथ दो पैर है, ये भी बिजनेस करता है, इसका भी परिवार है, इसके भी बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इतना खुश रहता है, भगवान का नाम जपता है, कहां जाता है, क्या करता है, ऐसा इसका लाइफ इतना खुशहाल क्यों है, कैसे अपने धन का इस्तेमाल करता है, कैसे अपने परिवार का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार अपने परिवार को भक्ति में लगा रहा है, तो ये तो यार पूरा का पूरा देवा देवता है, वो आपका आचरण देखेगा, और जब वो आपका आचरण देखेगा, आपको नोटिस करेगा, आपको खुश देखेगा, तो कहेगा मुझे भी जाना है जी, मुझे भी बनाओ ना, कहां के मेंबर हो आप बताओ ना। हम कहते हैं भैया मेंबर तो बहुत हैं, आप असली मेंबर बनिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, आपको देखकर वो सुधरेगा। लेकिन अगर हमारे चरित्र में उसको वही सब मिले जो उसके चरित्र में या बाहर वाले के चरित्र में है, जिस तरह के लोग बाहर के लोग बात करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, मारपीट करते हैं, अहंकार में दिखते हैं, क्रोध में दिखते हैं, यहां पर वो देखेंगे यहां के लोग वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वही उनको जगह चाहिए, वही उनको पोस्ट चाहिए, वही उनको अलग से सेटिंग चाहिए, अरे ये सब चीजें दिखती नहीं लोगों को क्या। मंदिर में अब देखिए कई चीजों में, कई मंदिरों में आप जाए, कई मंदिरों में आपको पकड़ लेंगे, यहां डालो ये दो मुझे दो, मेरा कितना तेरा कितना, वो कहेगा भाई मैं मंदिर आया था दर्शन करने के लिए, तुमने मुझे पकड़ लिया, मंदिर आया था भगवान को देखने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां के लोग तो बताएंगे ना कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप क्या बता रहे हो अपने आचरण से क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा, पैसा मुझे यहां इतना दो मुझे वहां इतना दो, तो इसका मतलब भक्त के पास क्या जाएगा मैसेज कि भगवान के पास जो इतना नजदीक व्यक्ति बैठा है, इसकी चेतना अगर मनी कॉन्शियस है तो मैं तो बुरा थोड़ी हूं, मैं भी तो ऐसे ही हूं बाहर, और मुझे छीन कर रहे पैसे, ये पैसे मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, ले 2 रुपए ले, 5 रुपए ले, 10 रुपए दूंगा, ज्यादा क्यों दूं अगर इसकी इतनी वैल्यू है, तो जो वैल्यूबल चीज है इतनी पास खड़ा होकर भगवान के या अपने लिए पैसे मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई, पैसा हो गया। इसलिए जब ऐसे मंदिरों में लोग जाते हैं तो पहले चेंज लेकर जाते हैं, 1-1 रुपए की चेंज दे दो पैसे छुपा के जाते हैं कि मां ने पकड़ना छीन ना ले। लेकिन जब वो भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी के इस मिशन के इन मंदिरों में आते हैं तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं अरे ये जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, ये व्यक्ति जो प्रवचन कर रहा है, ये व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये व्यक्ति इंजीनियर है, ये व्यक्ति अपने धन यहां लगा रखा है, ये तो सब कुछ नछावर करके यहां लगा है, ये तो अपने भक्तों अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा दिया, इसने तो ये खुद भी भक्ति कर रहा है, तो क्या मैसेज आएगा, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति इज मोर इंपॉर्टेंट। रूपा जी के पास कोई व्यक्ति धन लाया, लो जी रूपा जी का मेरे में उधर ही डालो, मैं हजम नहीं कर सकता इसमें तुम्हारी दो नंबर की कमाई। तो जब लोग ये देखते हैं कि यहां के भक्तों का शरणागति का लेवल, त्याग का स्तर इतना ऊंचा है, असली काम तो यही कर रहे हैं, असली धन तो ये कमा रहे हैं, असली तपस्या तो इनकी है, सुबह सुबह उठकर आ जाते हैं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, फिर मैं खाली पैसे देके निकल जाऊं। फिर उसको लगता नहीं मुझे देना चाहिए, ये जो ये छोड़कर आए, इस चीज को छोड़कर आएंगे जिसको मैं छाती से लगा के रखता हूं, तब उसको लगता है ये तो गंदा है, ये तो भगवान की सेवा में लगेगा तो कुछ वैल्यूएबल बनेगा, तब वो दान करता है। फिर लोग बोल रहे हैं आपके तो बाहर विदेशों से पैसा आता है, क्यों? क्योंकि तो दान का पैसा मंदिर में लगाते हैं। तो आचरण पर बहुत डिपेंड करता है, और आचरण तभी सुधरेगा जब हमारे प्रयास अच्छा भक्त बनने के होंगे, निस्वार्थ भक्त बनने के होंगे। हरिदास ठाकुर जी को जब लोगों को पता चला यार इतने अच्छे भक्त हैं, तो कुछ लोगों ने जाकर उनकी चुगली कर दी कि भैया ये मुसलमान था, भगवान के नामों का जप करते हैं, इससे तो तुम्हारा, हिंदू ने बोला कि इससे तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा अगर ऐसे मुस्लिम हरे कृष्णा करने लगे तो। उनको बुलवा लिया, तो मेन व्यक्ति नहीं थे उस समय, तो उनको जेल में डाल दिया कि कल सजा मिलेगी जब महाराज आएंगे, तो कुलपति बताते हैं उनको, तो जेल में डालते। जेल में गए तो बड़े सारे जमींदार, अच्छे अच्छे घरों के लोग वहां थे, कारण वो अपना टैक्स वैक्स नहीं दे पाए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर विषय में सुना तो था, और वो अंदर आए तो खूब कीर्तन हुआ जेल के अंदर, खूब हरिनाम हो रहे हैं, खूब चैंटिंग हो रही है, खूब कृष्ण कथा हो रही है। हरिदास ठाकुर को देखकर बड़ा अच्छा लगा, उन भक्तों को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर ने कि हे भगवान जिस तरह की सिचुएशन में ये अभी है ऐसे रहे हमेशा। तो कीर्तन बंद हो गया अचानक, उन्होंने कहा ये क्या श्राप दे दिया आपने हमें, कब से जेल में हम, आप एक दिन के लिए आए बोल रहे कि जैसे हैं वैसे रहें। कहते मेरे कहने का मतलब है कि जिस समय जिस तरह की चेतना आपकी अभी है, भगवान के नाम के जप में कीर्तन कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, मैंने इस सिचुएशन की बोला, ये तो एक्सटर्नल है, ये तो अंदर होना बाहर होना, कीर्तन चलता रहना चाहिए, हरिनाम होता रहना चाहिए, ये किसी भी जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान। तो जब फिर बाहर निकले वो आए, सब लोगों ने सभा बिठाई, हां जी भाई तुम यवन हो, मतलब मुस्लिम परिवार में आए, क्यों ये भगवान का नाम लेते हो? कहते जी मेरी रुचि है इसमें, और आपको पता ही है जो कुरान है वही पुराण है, जो पुराण में नॉलेज है वही कुरान में नॉलेज है, परमात्मा तो एक ही है, हम सब उसके अंश हैं, तो भगवान का नाम जप रहे हम। कहते नहीं तुम हिंदुओं के लोग ले रहे नाम ले रहे हो भगवान का, तो इसलिए तुम्हें पनिशमेंट देंगे। कहते आप उनको पनिशमेंट देते हो जो हिंदू कन्वर्ट कर देते हो आप इस्लाम धर्म में, तो चुप हो गए वो। कहते ठीक है छोड़ दो भाई जो लेना क्या करें। एक बोल पड़ा कि नहीं नहीं अगर ये इस प्रकार लेता रहा तो हमारे और मुस्लिम भी लेना शुरू कर देंगे, खत्म फिर तो। कहते हाँ तो क्या करें? कहते जी इनको हमारे यहाँ जो बाजार है 22 बाजार इसमें कोड़े से पिटवाओ, अगर इसकी इतनी भक्ति है तो कोड़े से पिट पिट के मर जाएगा, अगर बच गया तो हम कहेंगे ठीक है जी अच्छा भक्त है। कहते हाँ ये बात ठीक है, तो 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाया, और शर्त यह थी कि मरना चाहिए व्यक्ति, नहीं तो तुम्हारे को नहीं छोड़े। अब बताइए जिसको खुद की जान का हो तो कितना मारेगा, वो कितना मारा वो, लेकिन हरिनाम लेते रहे खुश रहे, कितना पीटा उनको, लोग रास्ते में उनको देख देख कर बोल रहे थे हे भगवान उन मारने वालों को यार हमसे कुछ पैसे ले लो, रिश्वत ले लो, लेकिन इनको छोड़ दो, मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन सब बोल रहे थे कि मत मारो ऐसा, हिंदू सब लोग बोल रहे थे। कहते भाई अगर हमने नहीं मारा इसको तो हमें हम मर जाएंगे। खूब देर तक पीटते रहे 22 बाजारों में, लेकिन वो हरिनाम लेते रहे आनंद में रहे, उनको दर्द ही नहीं महसूस हो रहा। और अंत में जब देखा कि मरने रहा तो प्रार्थना करने लगे भाई कुछ हो जाए, कुछ मर जाओ भैया, ये तो हमको मरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मर जाते, तो उन्होंने एक्टिंग कर दी मरने की और फिर बोला कि ना तो इसको जलाओ, तो जलेंगे तो हिंदू रीति से जल जाएगा, दफनाएंगे तो मुस्लिम लगेगा, तो उसको बहा दो पानी में, हरिदास ठाकुर गंगा में बहाने गए, गंगा में बह गए वो सांस लेकर, फिर आगे चले गए, फिर वो बच गए, तो बाद में उनको पता चला नहीं नहीं वो बच गए, वो तो भगवान के भक्त हैं। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले प्रकाश लीला में, महाप्रकाश लीला, एक बार चैतन्य महाप्रभु ऐसे आसन में बैठ गए विष्णु के आसन में, और उन्होंने बोला जाओ आज सबको बुलाओ, आज मैं जो हूं सबको कृष्ण प्रेम दूंगा। अचानक ही भाव महाप्रकाश लीला होगी, सबको बुला लिया, बुलाओ हरिदास को भी बुलाओ, तो हरिदास को बुलाया, हरिदास आए और हरिदास को बोला कि हरिदास तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, तुम नामाचार्य हो, इतना नाम लेते हो भगवान का, बोलो क्या चाहिए, और कहा कि तुम जो हो मेरे को इतने प्रिय हो, तुम्हारी विनम्रता इतनी अधिक है कि जब तुम्हें 22 बाजारों में कोड़ों से भी पीटा जा रहा था ना, तो मैंने सुदर्शन चक्र भी छोड़ दिया था उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन तुम बार बार ये कह रहे थे कि भगवान इनको छोड़ देना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, और आप प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों के लिए जो आपको मार रहे हैं, तो मेरा सुदर्शन चक्र वापस आ गया कि भैया वो तो मिलेगा उनसे वो तो प्रार्थना उनके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए चला नहीं। तो कहते महाप्रभु कहते कि मुझे फिर क्या करना पड़ा मालूम, मैं स्वयं तुम्हारे शरीर में आ गया, और जो हंटर मार रहे थे ना, एक एक चाबुक मेरी कमर पर लगा था, और उन्होंने अपने कपड़ों को उतार कर दिखाया कि कितने सारे निशान चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर थे। हरिदास ठाकुर जी ने जब ये देखा, जिन भगवान का वो नाम लेते हैं इतना कष्ट झेलकर वो अपने भक्त की रक्षा के लिए आ गए, तो मूर्छित हो, तो इस प्रकार की चेतना होती है भक्तों की। एक तो जब कोई भक्तों के प्रति कुछ करता है तो भगवान खुद बदला लेते हैं, दूसरा अगर भक्त ही इस चेतना का है, जैसे क्राइस्ट थे ना, वो भी कहते थे इनको मत मालूम, इनको इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, हमें मालूम है कोई हमारे लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई हमारे लिए खड्डा खोद रहा है, कोई हमारे बारे में निंदा कर रहा है, कोई हमारे बारे में कोई हवा बना रहा है, किसी की चेतना ठीक नहीं है, बेचारा परेशान है, ठीक प्रकार से भक्ति नहीं कर पा रहा, जप नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छे भक्तों का संग नहीं प्राप्त है, इसलिए वो भक्ति में आगे बढ़ने की जगह ईर्ष्या द्वेष में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे भक्त को के लिए हमें कुछ गलत सोचना चाहिए, उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपने भी बोला कि अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन समस्या तब होती है जब ऐसा भक्त आपके लिए कुछ गलत सोच रहा है, आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, तब हमारी चेतना इस प्रकार की नहीं होती कि हम उसके लिए कुछ अच्छा सोचें। हम तो भगवान से बस एक ही बात बोलते हैं, क्या जनरली क्या बोलता है व्यक्ति है, क्या बोलते हैं जनरली हम, हे भगवान आप देख रहे हो ना, ये है वो, ये इसने मेरा जीना दुश्वर कर रखा है, अरे उसके मुंह पे बोल देते हैं, भगवान तो है ना, कोड़ पड़ेगा कोड़, ये होगा तुम्हें वो होगा तुम्हें, बोलते हैं लोग। भाई प्राकृत भक्तों की अवस्था की बात करें, प्रार्थना करते हैं लोग आके कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान तो देख ही रहे हैं ना, मतलब ना जिस तरह से, मतलब कहने का मतलब क्या है, करने वाला भी बेचारा प्राकृत भक्त अज्ञानता में है और जिसके साथ कर रहे हैं वो भी प्राकृत अवस्था में है। तो जब किसी के साथ बुरा हो जाता है तो हम बदला लेने की सोचते हैं, हम उसको ईर्ष्यावश उसकी शिकायतें लगाएंगे, ईर्ष्यावश रिपोर्ट नहीं करेंगे ताकि इससे उसको डांट पड़े, ताकि इनकी नजर में खराब हो जाए। जबकि होना क्या चाहिए कि इस भक्त का मैं कैसे भला करूं, क्योंकि ऑलरेडी वो बेचारा गलत है, उसकी चेतना गलत हो रखी है, वो अपराध कर रहा है, तो मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये अच्छे भक्तों के स्तर की बात कर, वो प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हो सकता है मुझमें गलतियां हों, उसे दिखी हों, मेरे में बहुत कमियां हैं, बट मेरी कमियां, मेरी गलतियां उसके अपराध का कारण बन रही हैं। हम तो अपने को सही मानते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या ही है, क्योंकि हमें लगता है कि वो ऐसा बोल रहा है ये उसका अपराध है, वरना मैं तो 16 आना सच हूं, मैं तो सब कुछ ठीक हूं। अरे हमसे भी तो गलतियां हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसबिहेव हो सकता है, मिस एक्शन हो सकता है, और कुछ अलग होते हुए उसको कुछ और लग सकता है, वो इसलिए निंदा कर रहा हो। तो बोलना चाहिए कि मैं ही हो सकता गलत हूं, मेरे से कुछ गलतियां हुई हूं जिसके कारण वो बेचारा आज इस अवस्था में है कि मेरी निंदा करने पड़ रही है उसको, तो उसकी रक्षा करना, उसको ऐसी बुद्धि देना कि वो उससे आगे निकल सके, है ना, उसका भला सोचना, यह है वैष्णवता। क्योंकि हमारे हृदय की एक एक बात भगवान को पता है। बाहरी रूप से हो सकता है हम लोग बड़े हम्बल दिखें, हम्बल बात करें, प्रणाम करें, लेकिन भगवान सब चीज जानते हैं। तो अल्टीमेटली हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम लोग आपस में भक्तों के बीच में ग्रुपिज्म नहीं, ये मेरे ग्रुप का, ये उसके ग्रुप का, तो इसको मैं देखूंगी, इससे मैं बात नहीं करूंगा, इससे मुझे मना किया है, इससे ऐसा, अरे वैष्णवों के समाज में बाबा, तो ग्रुप लीडर को भी सुधरना चाहिए और ग्रुप मेंबर को भी सुधरना चाहिए सेल्फलेसली भक्ति के लिए, क्योंकि अगर कहीं बट उठा गए तो फिर हृदय नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा, और अगर पहले से ही सही चेतना में है, पहले से ही हम लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना है, वैष्णव सिद्धांतों पर बात करते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, नहीं ये तो ऐसा ही है, इसको तो मैं जानता ही हूं, ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, नहीं, तो इस प्रकार हमें इन सब चीजों को बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार जब हम लोग श्रवण अच्छे ढंग से करेंगे, कीर्तन अच्छे ढंग से करेंगे, और जब सही ढंग से करेंगे, तो ये सद्गुण आएंगे हमारे अंदर। आप अचानक ऐसे लोगों का संग छोड़ना पसंद करोगे जो लोग आपको भ्रमित करते हैं, या जिनके संग से आपके अंदर कुछ ना कुछ गलत आ जाता है, जिसका आप चिंतन करते हैं, वो आपसे अपराध होते हैं। आप अपने छोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने आज कोई निंदा सुनी, आज आपने कुछ गलत सुन लिया, क्योंकि निंदा सुन मैं करता नहीं हूं लेकिन सुनता हूं, टाइम पास नहीं होता ना इसलिए सुनता हूं, उसका भी बड़ा नुकसान है। पार्वती जी बोल रही हैं भागवतम के 4th स्कंध में कि नहीं सुननी चाहिए, अगर आप सुन रहे हो तो 3 काम करो, एक जो बोल रहा है उसको डिफीट करो कि नहीं तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये उसके अंदर गुण है, ये है, ये है, नहीं कर सकते तो स्थान छोड़ दो, तो स्थान को छोड़ दो, मत सुनो, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो तो इतने सीनियर थे ये, अरे भैया माफी मांगो और को मुझे अर्जेंट काम है, निकल जाओ। उस सीनियर को भी तो लगना चाहिए, उस व्यक्ति को भी तो लगना चाहिए कि आप उस कैटेगरी के नहीं हो कि मैं आपको, उसको पता चल जाएगा कि यार सिंसियर, दूसरा निंदा करने वाले की जुबान को काट दो, ये आप कर नहीं सकते। और तीसरा, अगर उसको नहीं मार सकते, उसको नहीं काट सकते, क्योंकि आपने निंदा सुन ली है, तो आप खुद अपनी भक्ति को बचाने के लिए उसी अवस्था में प्राण त्याग दो, है ना जी। और प्रभुपाद जी प्रपट में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इसको बांटा इस तरह, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कह रहे हैं जो ब्राह्मण है उन्हें स्थान छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की आवश्यकता है समाज, है ना। और अगर वो क्षत्रिय है तो उसे क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए सामने वाले। और वैश्य और शूद्र हैं उनके लिए लिखा है क्या, आत्महत्या कर ले। तो आप लोग तो वैष्णव हैं, ब्राह्मण से भी ऊपर है, तो आपको बढ़िया क्या करना है, स्थान छोड़ना है। जो हरि नाम ले रहा है सब वैष्णव, तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। और अगर किसी को लगे कि मैं ऐसे व्यक्ति के अंडर में हूं या ऐसे व्यक्ति के उसमें हूं, पहले तो जिनके अंडर में या जो ग्रुप लीडर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो इस प्रकार का स्तर का आचरण पेश करें, तभी तो लोग नीचे रुकेंगे और जुड़ेंगे। और अगर किसी को लगे कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं अपने सीनियर को, या निंदा हो जाती है या कुछ ऐसी दिक्कत आई जाती है, तो अपनी भक्ति की रक्षा करनी है ना, प्रश्न करो उससे, सर ये निंदा नहीं है क्या, नहीं सेटिस्फाई कर सकते, आप बोलो ठीक है मैं समझ नहीं पा रहा आपके अंदर में, आप स्थान बदलो, ऐसे व्यक्ति का संग करो जो आपको समझा सके, जो निंदा शून्य है। तो इस प्रकार अगर हम सीरियस हैं, सीरियस होना ही पड़ेगा ना, है क्या, होना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेवारी है, सारी दुनिया हमको देख रही है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, खाली ईंटों का थोड़ी बनाना है इसको, कहां से जुड़े हो, जो रोहनी से जुड़े हो, जो बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसे ग्लोरीज नहीं फैलानी इस मंदिर की। कई मंदिर है हमारे इस तरह जहां पर कि कुछ झगड़े हुए, कुछ दिक्कत हुई आपस में, वही भक्त लोग यही जुड़ते हैं, यही से इकट्ठे होते हैं, इसी समाज के लोग होते हैं, यही ग्रुप बनता है, यही दिक्कत होती है, यही झगड़े होते हैं, पूरा बदनाम मंदिर। तो हमें तैयार करना है इस मंदिर को कि क्या किस रूप में चाहते हो, किस रूप में जाना जाए रोहिणी मंदिर, कि ऐसा मंदिर जहां पर इतने लोग हैं और हरे के सिंह भिड़े हुए, ये ग्लोरीज है ना, ऐसा मंदिर जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख नहीं सकता, जहां पर एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से इसलिए लड़ाई हो जाती है कि गाने नहीं दिया या उसने ये कर दिया या उसको ये सेवा मिल गई, किस रूप में जाना जाना चाहिए, है ना। या नहीं, मंदिर बड़ा सुंदर है जी, और भक्त, अरे भक्तों की पूछो ही, सुंदर मंदिर सुंदर, अरे क्या करेंगे, इससे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीज तो एसएल वर्ल्ड ने बना रखी है, ये मॉल में बनी हुई है, लोग वहां जाएंगे ना, हमारा मंदिर जाना चाहिए हमारे अच्छे भक्तों की वजह से, ऐसे भक्त जो वैष्णव सदाचार की किताबें पढ़कर अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे भक्त जो हर वैष्णव की रेस्पेक्ट करते हैं, हर व्यक्ति को जो है पूरा सम्मान देते हैं, ऐसे भक्त जो भक्ति में बहुत अग्रसर है, जिनके जीवन का लक्ष्य भक्ति है, ऐसे भक्त जो सदैव दूसरे भक्तों का आदर सम्मान करते हैं, ऐसे भक्त जो निंदा शून्य है, ऐसे भक्त जो पुस्तक वितरण में प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहे हैं, जो सुंदर आचरण के द्वारा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जो सुंदर कीर्तन, जो नृत्य, जो जप के द्वारा लोगों को मोहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों जाना चाहिए, तब इस मंदिर की ग्लोरीज बढ़ेंगे। नहीं तो बहुत सारे मंदिर हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान दिखना, ये रहना, वो सब फायदा नहीं। तो रोहिणी का मंदिर जो है ये इस रूप में जाना चाहिए, और उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, किसका? अपनी ईगो का, अपने घमंड का त्याग करना पड़ेगा, अपने पुरानी आदतों का त्याग करना पड़ेगा। नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा हूं, इसका त्याग करना पड़ेगा, इस तरह की मेंटालिटी का त्याग करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे युग की रोहिणी के लिए, तो उसमें हम लोगों के नाम अंकित हैं। और जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी हिलडुल करी, जिसने थोड़ी सी भी मनमानी करी, जिसने थोड़ा सा भी इस कल्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, भगवान ऐसे वैष्णव को सह नहीं पाएंगे और उसको कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस दे देंगे, ऐसा शारीरिक प्रॉब्लम दे देंगे, ऐसे झंझटों में फंसा देंगे। वो कहेंगे आजकल मैं बड़ा व्यस्त हूं इसलिए नहीं आ पा। नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति, भगवान कहेंगे नहीं चाहिए, जो वैष्णव के समाज में रहने लायक नहीं। तो त्याग कर दिखाइए, समर्पण कर दिखाइए। इंडिपेंडेंट तो बहुत दुनिया है, बहुत भक्त हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने हिसाब से चलते हैं, जो हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, जो हर प्लानिंग अपने हिसाब से करते हैं, जो भक्ति अपने हिसाब से करते हैं। इंडिपेंडेंट की तो कमी नहीं है ना। तो सरेंडर होकर दिखाइए। उन भक्तों की लिस्ट में नाम लाइए जो समर्पित हैं। इंडिपेंडेंट लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, देखो ये आया है, अपने आपको बड़ा सरेंडर बनता है, चमचा है चमचा ऐसा भी बोलेंगे। अरे प्रभुपाद जी के डिसाइपल कहते थे, अपनी टोपी पे लिखवाते थे प्रभुपाद डॉग, मैं प्रभुपाद का कुत्ता हूं। दो गाली मुझे कि हाँ मैं कुत्ता हूं, लेकिन प्रभुपाद को, अरे तुम तो आवारा कुत्ते हो। तो प्रभुपाद जी का कुत्ता कहलाना ज्यादा अच्छा है, गुरु का कुत्ता कहलाना ज्यादा अच्छा है आवारा से। गुरु के हैं चमचे हम हैं, हम करची हैं जी, कढ़ाई है पूरी हम हैं, लेकिन गुरु के हैं। तो इस प्रकार का समर्पित भक्त हजारों लोगों को आकर्षित करेगा। ऐसे समर्पित भक्तों को चैतन्य महाप्रभु पूरी गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धाम जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त की सीट पक्की है उसके शरणागति के आधार पर। ठीक है, तो समय ज्यादा हो गया। हरिदास ठाकुर जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरि नाम बढ़ाएं, जप अधिक करें, विशेष दिनों में विशेष जप, अधिक जप, ताकि हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हो। और हरि नाम के प्रति जितनी रुचि उत्पन्न होगी, जितने सुंदर ढंग से श्रवण करेंगे, तो ये सारे सद्गुण आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? कुछ शायद समझा नहीं मैम। जिस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं वैष्णव कैटेगरी में आएगा, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, वैष्णव कैटेगरी का हमने बताया ना, वो अगर ऐसी चीज कुछ है तो वो अपने गुरु से पूछ के करे, कुछ भी करे, अपने सीनियर से पूछ के करे जी मैंने ऐसे सुन लिया क्या करूं। उनका सीनियर कहकर ठीक है कल से एसोसिएशन में करना, तो वही इसकी इंस्ट्रक्शन, उसको इन तीनों कैटेगरी में जाने की जरूरत। जो ऐसा नहीं सोचता, मारने का। समझ नहीं पाया, मैं अलग से आके पूछ लेता हूँ। और किसी को प्रश्न है क्या? अभी पूछता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।